आशिका को आकाश अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। इस बीच उन पर कुछ एजेंट ने हमला कर दिया था। आकाश आशिका को लेकर वहां से भागने के फिराक में था, लेकिन वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसे यही लगा कि किसी गलतफहमी के चलते उसके जेट पर हमला हुआ है, और उसने मामले को शांति से निपटने का फैसला किया। उसने एजेंट को अपने जेट में आने दिया। आकाश एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव कर रहा था, जो बस अपनी होने वाली पत्नी के साथ घूमने के लिए बाहर जा रहा था। ऑफिसर्स ने भी उसके साथ कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया था, तो एक बार के लिए आकाश पूरी तरह अश्योर्ड हो चुका था। लेकिन तभी उनके एक ऑफिसर ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया था। आशिका का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन वो जानती थी कि कुछ सेकंड्स पहले क्या हुआ था। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के कहा, उसने पैराशूट पहना हुआ है, वो नहीं मरने वाला। उसकी बात सुनते ही ऑफिसर तुरंत उसकी तरफ पलटा और सर हिलाकर अफसोस भरे लहजे में बोला, पहले बताना चाहिए था ना, पैराशूट निकालकर धक्का देता। वैसे तुम्हें दुख हो रहा होगा ना कि तुम्हारा होने वाला पति मरने वाला था। इतना कहकर उसने अपना मास्क निकाला और वो आशिका के सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, उसके गालों पर हल्के डिम्पल पड़ रहे थे और उसकी ग्रे आईज आशिका को दिलचस्पी से देख रही थी। डिफेंस में होने की वजह से उसकी हाइट और बॉडी काफी अच्छी थी। कैप्टन गर्व राय, आशिका ने उसकी ड्रेस पर लगे बैच की तरफ देखते हुए कहा, आपका बिहेवियर काफी अनप्रोफेशनल है। रियली? गर्व ने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे लगा तुम मुझे एक बड़ी सी थैंक यू स्पीच देने वाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। बोलते हुए वो एक पल के लिए रुका और फिर गर्दन टेघी करके आंखें सिकोड़ कर कहा, एक सेकंड, कहीं सच में तुम उससे शादी करने तो नहीं जा रही थी? आशिका ने तुरंत नामे सिर हिलाया और जवाब में कहा, बिल्कुल नहीं, वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। आशिका इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि गर्व बिल्कुल सही टाइम पर आया था और उसने आशिका को बचाया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो थैंक यू कहने से झिझक रही थी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें सामने वाले को थैंक्स, सॉरी, ये फॉर्मल शब्द कहने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाय द वे, यू आर वेलकम। अब सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना, जो मदद मांगने पर भी हेल्प करने नहीं आते हैं। कुछ लोग बिना हेल्प मांगे ही सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, जर्व ने तंज भरे लहजे में कहा, जिस पर आशिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, गर्व सिर हिलाकर बोला। मुझे सच में कुछ नहीं पता है, कुछ हुआ है क्या? आशिका ने हैरानी भरे भाव से पूछा। इसका मतलब तुम्हारे यूजलेस दोस्त ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? खैर, इसमें गलती उसकी है, लेकिन सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि अगर मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए चलना होगा और हमेशा के लिए हमें ज्वाइन करना होगा, गर्व ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। आशिका ने तुरंत उसकी बात पर इनकार करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मुझे तुम लोगों के बीच क्या बात हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम अभी मुंबई छोड़ो, मुझे अभी। वो बोलते हुए रुक गई थी। आशिका गर्व के सामने अभिमान का जिक्र भी नहीं करना चाहती थी। क्या अभी? अभी तुम सीधे मेरे साथ चल रही हो, पहले हम हमारे कॉप्टर्स में जाएंगे और वहां से सीधा वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड ऐश, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं संभाल सकता है, गर्व ने इस बार गंभीर आवाज में कहा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मुंबई जाना है, प्लीज मुझे एक दिन का टाइम दो, आशिका ने रिक्वेस्टिंग वॉइस में कहा। आशिका जाने से पहले एक बार अभिमान से मिलना चाहती थी। उसे अच्छे से याद था कि जब उसने तृप्ति से मिलने जाने की बात कही थी तब अभिमान कितना घबरा गया था। उसने ही चेतावनी दी थी कि आशिका कहीं आसपास छुप जाए। वो अचानक गायब हो गई थी तो जाहिर सी बात थी कि अभिमान उसके लिए परेशान हो रहा होगा। एक दिन बहुत ज्यादा होता है ऐश, और ऑलरेडी हम काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं तुम्हें ढूंढने में। आई विश रिहान ने हमारी हेल्प की होती, गर्व ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। ठीक है, लेकिन वहां पहुंचकर मैं एक कॉल तो कर ही सकती हूँ ना, आशिका ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो, कौन सा तुम बेस में पहली बार जा रही हो, वहां कॉल करना तो दूर की बात है, तुम अपना कोई पर्सनल डिवाइस लेकर तक नहीं जा सकती ताकि तुम्हें कोई ट्रैक कर सके। सी ऐश, तुम मुझे अलग लग रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है जिसके लिए तुम टाइम मांगकर उसे अपने बारे में बताना चाहती हो, फिर मुंबई जाने का कारण जान सकता हूँ मैं, गर्व ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आशिका ने तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली थी। उसने ना में सिर हिलाया और हल्के लहजे में बोली, कोई नहीं है, बस मेरा कुछ सामान छूट गया है, मुझे बता देना, मैं नया खरीद दूंगा, गर्व ने हल्का मुस्कुराकर कहा। आशिका ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, वो इस काम के लिए मना नहीं कर सकती थी और अगर करना भी चाहती थी तो फिलहाल उसके पास दूसरा कोई तरीका नहीं था। गर्व की ऑर्डर्स पर प्राइवेट जेट को पूरी तरह उनके कब्जे में ले लिया गया था। वो सुरक्षित आशिका के साथ वापस अपने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में आ गया था और जहां से वो लोग वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरने लगे। आशिका जानती थी कि वो अभिमान से अब और भी ज्यादा दूर जा रही है, इसके बाद न जाने कब वो उसे दोबारा मिल पाएगी। आशिका की आंखें बंद थीं और उनमें अभिमान का ही चेहरा था।
मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी, आशिका ने मन ही मन कहा। आशिका अभिमान के ख्यालों में खोई हुई थी, तभी गर्व ने उसके हाथ पर हाथ रखा। इसी के साथ आशिका चौंक गई थी और उसने तुरंत अपना हाथ गर्व से अलग कर लिया था। वैसे तुम उस माफिया की नजरों में कैसे आई? वो आदमी काफी डेंजरस है, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, गर्व ने स्काई के बारे में पूछा। मेरी माँ, आशिका बोलते हुए रुक गई क्योंकि वो जान गई थी कि तृप्ति उसकी माँ नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा मतलब है तृप्ति बजाज की बात कर रही हो? जरूर उसने तुम्हें उसके चक्कर में फंसाया होगा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उससे दूर रहो, गर्व ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। आशिका उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। उसने ठंडे लहजे में कहा, उसका पता नहीं, लेकिन तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। पता है ना, हम साथ में काम बेशक करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के काम में दखल देने का हक नहीं है। और साथ ही एक दूसरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट रखना और अपनी कुलीग के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना टर्म्स के खिलाफ है। गर्व ने उसे देखकर मुंह बनाया और कहा, ठीक है, इतना चलता है, और मुझे रोज मत याद दिलाओ। सब तुमसे गुस्सा है क्योंकि पिछले कई दिनों से तुमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चक्कर में हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा है। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हें आगे जाकर खुद के न आने की क्या सफाई देनी है। आशिका ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया था। दूसरी तरफ निशा को सारा सच बताने के बाद अभिमान अपने कमरे में पहुंचा। आज आशिका के बिना उसे वो कमरा कुछ ज्यादा ही खाली लग रहा था। उन्हें साथ रहते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जब से आशिका आई थी वे दोनों साथ में ही कमरे में दाखिल होते थे, या फिर वो लेट भी आता था तो आशिका उसका इंतजार करते हुए मिलती थी। अपने कमरे के खाली कोने को देखकर अभिमान को उसकी कमी का और भी एहसास हुआ। उसने देखा कमरे में आशिका के कपड़े फैले हुए थे, जो शायद बाहर जाने से पहले उसने चेंज करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए थे। कितनी बार कहा है कि खुद के कपड़े तो सही जगह पर रख दिया करो, ये छोटे काम भी मुझे करने पड़ते हैं, अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा और उसके कपड़े उठाकर समेटने लगा।
अभिमान उन्हें लेकर बाथरूम में गया और तभी उसकी नजर वहां रखे लेंस के केस पर गई। उसे देखते ही अभिमान ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, तुम बहुत बुरी हो, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि हम साथ में बचपन में खेला करते थे और मैं तब भी तुम्हें कितना पसंद करता था? तुम्हें याद नहीं है, जानबूझकर तुमने बाकी चीजों की तरह ये भी मुझसे छुपा कर रखा। अभिमान आशिका की चीजों से उसके साथ शिकायत कर रहा था, तभी उसके पास अभिमन्यु का कॉल आया। गुड न्यूज है, हमें उस प्राइवेट जेट का पता चल चुका है जो तुम्हारे डैड ने बुक किया था, वो लोग स्विट्जरलैंड जा रहे थे, अभिमन्यु ने दूसरी तरफ से कहा। अभिमन्यु की बात सुनते ही अभिमान की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। उसने जल्दी से कहा, ठीक है फिर, मैं अभी स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करवा लेता हूँ। हम उनसे पहले तो नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन मेरा एक आदमी है जो मिस्टर राजवंश के आसपास रहकर उनकी खबर देता था, वो उनकी स्विट्जरलैंड की प्रॉपर्टी के बारे में बता देगा और फिर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अभिमान की आवाज़ में चमक देखकर अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और मायूसी से भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी होप तोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन जब उस जेट से कॉन्टैक्ट किया गया तब पता चला कि उसे रास्ते में हाईजैक कर लिया गया था। क्या? अभिमान जल्दी से बोला, तो क्या मिस्टर राजवंश के दुश्मनों ने ये किया? कह नहीं सकते, क्योंकि पायलट ने बताया कि उनके ऊपर कॉम्बैट कॉप्टर से हमला हुआ था। ऐसे कॉप्टर्स अक्सर ऑफिशियल डिफेंस से जुड़े होते हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की क्राइम एक्टिविटी के तहत ये हुआ है। उन्होंने आकाश राजवंश को इमरजेंसी एग्जिट करते हुए भी देखा था। मुझे लगता है अब आशिका अकेली है और शायद उनके पास है, अभिमन्यु ने बताया। अभिमान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात की खुशी मनाए कि आकाश और आशिका अलग हो चुके हैं, या इस बात का दुख कि अब उन्हें आशिका के मिलने की जो 1-2% उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। अभिमान के कुछ ना बोलने पर अभिमन्यु ने कहा, आशिका के बारे में हम सब कुछ नहीं जानते हैं और ऐसे में सिर्फ एक ही शख्स है जो हमें बता सकता है। मैं उसके मैनेजर रेहान को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं है। आशिका तुम्हारे लिए काम करती थी और तुमने उससे पहले भी कॉन्टैक्ट किया था, क्या तुम रेहान से कॉन्टैक्ट कर सकते हो? हाँ, रचित कर सकता है, मैं उसे कहता हूँ, अभिमान बोला। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। अभी तो आशिका को गायब हुए कुछ घंटे ही बीते थे और उतने में ही अभिमन्यु ने आशिका के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया था। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आशी परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। वो जानती थी कि आज उनके प्लान का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जहां तृप्ति आशिका को आकाश के साथ भेजने वाली थी। काफी देर से आशी तृप्ति से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इस वजह से आशी थोड़ा परेशान हो गई थी। ऊपर से उसे आशुतोष और काजल भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब भी मुझे जरूरत होती है इनका कभी फोन नहीं लगता है, अजीब मुसीबत है। अगर चली भी गई है तो कम से कम एक मैसेज करके ये तो बता सकती थी कि आशिका हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है, आशी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हुई थी। आशी ने एक बार फिर तृप्ति को कॉल करने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र बाहर से आए आशुतोष और काजल के ऊपर गई। आशुतोष काजल को संभालते हुए अंदर लेकर आ रहा था। ये लोग सुबह सुबह कहाँ गए थे? आशी ने उन्हें देखकर हैरानी भरे लहजे में कहा। काजल की हालत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिलहाल आशी तृप्ति से कॉन्टैक्ट करने के बजाय काजल को संभालने के लिए नीचे आ गई थी। मॉम,
क्या हुआ आपको? काजल की बिखरी हुई हालत देखकर आशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, लेकिन तभी आशुतोष ने बिना किसी भाव के तेज आवाज में कहा, विहा एक काम करो, काजल के लिए पानी लेकर आओ और उसकी दवाइयां भी। हाँ, आशी ने जल्दी से जवाब दिया और वो जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन तभी उसने आशुतोष के शब्दों पर ध्यान दिया। उसने उसे आशिका के बजाय विहा कहकर बुलाया था उसके असली नाम से। दूसरी तरफ पृथ्वी ने तृप्ति से उसका मोबाइल छीन लिया था और उसे कैद कर लिया था। वो अभिमन्यु के काम में लगा हुआ था, इसलिए उसने तृप्ति के मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार किसी का कॉल आ रहा था तो उसे मोबाइल चेक करना ही पड़ा। स्क्रीन पर आशी का कॉल देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई थी। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, और लगता है कि अब आशी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिए, अगले पार्ट पर मिलते हैं।